युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियो भाइयो, हमारा शिविराज समाप्त हुआ।
बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए अपने इस व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकाल करके मैंने आपको बुलाया। आप यह समझते होंगे कि हमने आवेदन पत्र भेजा था और हम अपनी ओर से प्रार्थना करके आए हैं। असल में ऐसी बात नहीं है। असल में मैंने आपको बुलाया था।
चिट्ठी आपकी आई थी जरूर, पर संकेत मैंने भेजा, इशारा मैंने किया।
किस काम के लिए संकेत भेजा?
बेटे, एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, शायद आपको अनुभव हो सका हो। यदि आपको यह अनुभव हुआ हो कि यहाँ रोजाना जप कराया जाता रहे, अनुष्ठान कराया जाते रहे, हवन कराया जाता रहे, व्याख्यान होता रहे, तो मेरी दृष्टि में यह सारे कार्य कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे।
अगर आप चाहते तो यह कार्य अपने घरों पर कर सकते थे, अनुष्ठान भी अपने घरों पर कर सकते थे, हवन आपने कभी नहीं किया है तो हवन भी आप कर सकते थे, व्याख्यान भी सुन सकते थे।
व्याख्यान कौन सा है?
मेरी समझ में जो कुछ भी आता है, पहली तारीख तक अपने सारे विचार मक्खन से घी निकालने के तरीके से अखंड ज्योति में छाप देता हूँ और मेरे पास कोई विचार नहीं है।
मित्रों,
मेरे पास और विचार होता तो मैं आपसे छिपाता क्यों? लाखों पाठक मेरा इंतजार करते रहते हैं कि पहली तारीख तक गुरुजी ने क्या कहा होगा। जो कुछ भी मैं सोच पाता हूँ, नई बात जान पाता हूँ, तुरंत निकाल देता हूँ और खाली हो जाता हूँ। व्याख्यान देने के लिए अब मेरे पास क्या बचा है?
बेटे, व्याख्यान देने के लिए अब कुछ नहीं है मेरे पास। व्याख्यान निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है।
इसमें जो कुछ भी था आपसे मैं कह चुका हूँ, यह सब उन्हीं की पुनरावृत्तियाँ हैं। गायत्री महाविज्ञान में मैंने गायत्री मंत्र की सब बातें बता दी है और हवन जो आपको मैं मुद्दतों से सिखाता रहा हूँ। फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए मैंने आपका पैसा खराब किया,
आपका समय खराब किया? बेटे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जिसको मैं कहना चाहता था।
वहाँ से इतनी दूर से मैं अपनी बात कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको अपने पास बुलाया। किस काम के लिए बुलाया? तीन बातें मुझे आपसे कहनी थी और बड़ी संजीदगी के साथ कहनी थी। मैं सोचता था कि काश आप उन तीन बातों को समझ पाएं तो मजा आ जाए। एक बात मैं आपसे यह कहने वाला था कि यह एक विशेष समय है।
ऐसा समय फिर दोबारा नहीं आ सकता।
कभी लाखों वर्षों में एक बार यह समय आया है, फिर नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसमें युग बदल रहा है, युग की संधियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है। समय में इतनी बड़ी क्रांति आ रही है कि इतिहास में फिर ऐसा समय कभी नहीं आएगा।
एक समय था जब हिंदुस्तान में स्वराज्य की लड़ाई लड़ी गई।
अब बेटे, वह समय फिर से नहीं आ सकता।
उसमें जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई और जेल चले गए थे, वे छह छह महीने की जेल जाने वाले लोग आज मिनिस्टर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं,
जाने क्या से क्या बने हुए हैं। जो तीन महीने के लिए जेल चले गए उन्हें 200 रुपये पेंशन मिलती है, 300 रुपये पेंशन मिलती है। छह महीने जेल जाने वालों, तीन महीने के लिए जेल जाने वालों को सारी जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी।
गुरुजी,
हम तो दोबारा तैयार हैं। आप हमें भी तीन महीने के लिए, छह महीने के लिए जेल भिजवा दीजिए और फिर हमको मुख्यमंत्री बनवा देना, मिनिस्टर बनवा देना।
बेटे, अब वह समय नहीं आएगा।
नहीं महाराज जी, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो बेटे, अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लो, मार पीट कर डालो तो जेल चले जाओगे।
एक साल की सजा हो जाएगी तो क्या गुरुजी?
फिर जेल से आकर के हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे,
पेंशन भी मिल जाएगी।
नहीं बेटे, अब वह सब नहीं बनेगा। जो समय चला गया सो अब नहीं आ सकता। मैं क्या कर सकता हूँ?
समय गया सो गया, फिर नहीं आएगा।
युग की संध्या है, यह सन 1977 जिसमें हम और आप रह रहे हैं। आपको तो दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं आपसे कहता हूँ कि युग बदल रहा है और यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें मनुष्य जाति के जीवन और मरण की समस्याएं शामिल हैं। इसमें या तो मनुष्य जाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मर जाएगी और यह धरती ऐसी सूनी पड़ी रहेगी जैसे चांद सूना पड़ा रहता है।
मनुष्य जाति का, जीव जंतुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा।
या फिर युग संधि की वेला में ऐसा समय आने वाला है कि हम वर्तमान परिस्थितियों में नहीं रह सकते। यह वर्तमान परिस्थितियां चलेंगी या फिर मनुष्य के भीतर से देवत्व उदय होगा और सारे के सारे वातावरण में वह परिस्थितियां पैदा होंगी जिनको हम रामराज्य कहते रहे हैं, सत्युग कहते रहे हैं, स्वर्गीय वातावरण कहते रहे हैं। या तो ऐसा वक्त आएगा, पर बीच का वक्त नहीं रहेगा।
मित्रों,
यह युग संधि की वेला है, हम इसे बदल रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है।
ऐसे समय का मूल्य और महत्व आपको समझना चाहिए।
अगर ऐसे समय का मूल्य और महत्व आप नहीं समझेंगे, तो आप अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे और वक्त को जान नहीं सकेंगे। कितने आदमी जिंदा रहते हैं, कितने आदमी मरते रहते हैं। कोई ठोकर खाकर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई कैंसर का मरीज हो करके मर जाता है, लेकिन जिसने समय को पहचान लिया है, उसका नाम भगत सिंह हो जाता है।
भगत सिंह मरेगा?
नहीं, कभी नहीं मरेगा। कौन मरेगा? तू मरेगा, लेकिन भगत सिंह नहीं मर सकता। उसने समय को पहचान करके उसकी कीमत कैसे चुकानी चाहिए, मुनासिब वक्त का कैसे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, यह समझदारों का काम है। मैं चाहता था कि आप समझदारी का कोई इम्तिहान दे पाते और समझदार कहला पाते, तो मज़ा आ जाता।
मित्रों,
मैंने आपसे यह कहा था कि आप परिवर्तन के इस जमाने में जीवात्मा के ऊपर जो जिम्मेदारियां आती हैं, उनको आप निभा पाएं, तो अच्छा है।
अगर आप लोग जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, तो दुनिया मरेगी।
क्यों मरेगी? शीशे के तरीके से इसकी तीन वजहें तो साफ हैं, जिनसे दुनिया का मरना साफ दिखाई पड़ता है। एक वजह क्या है? पहली वजह यह है कि दुनिया में ऐसे हथियार बनते चले जा रहे हैं जो एटॉमिक हथियार से भी अधिक घातक हैं।
पहले जो एटॉमिक हथियार बने थे, अब वे पुराने हो गए।
अब किरणों के हथियार बन रहे हैं। अब स्पुतनिक में से कुछ किरणें छोड़ी जा सकती हैं और तमाम इलाका जो जैसा बैठा हुआ है या सोया हुआ है, वैसे ही बैठा का बैठा रह जाए या सोया का सोया रह जाए,
जहां का तहां लेटा का लेटा रह जाए,
सब जल भूनकर खाक हो जाएंगे। ऐसी किरणें छोड़ी जा सकती है। दुनिया का नाश करने के लिए अब एक से एक बढ़िया चीजें निकल रही हैं। कोई भी एक पागल आदमी उठकर खड़ा हो जाए तो दुनिया को तहस नहस कर सकता है। एक आदमी सारी दुनिया को, लाखों करोड़ों वर्ष की मनुष्य की सभ्यता को खत्म कर सकता है। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण से विनाश सामने दिखता है।
हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वे तो बच्चों के खिलौने जैसे थे।
उसके मुकाबले तो आज कितने ताकतवर और मारक हथियार बन गए हैं।
अगर इस ताकत का किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो दुनिया नष्ट हो जाएगी।
मित्रों, नंबर दो, दूसरी वजह है, इंसान जितना घटिया होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, बौना होता चला जाता है। अगर यह बौनापन और घटियापन कायम रखा गया, तो बेटे इंसान इंसान को मारकर खा जाएगा,
आदमी आदमी को मारकर खा जाएगा। एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति अपने कर्तव्यों की बात विचार ही नहीं सकेगा,
केवल अधिकार की बात सोचेगा कि हम इससे अधिक से अधिक क्या फायदा उठा सकते हैं। मर्द यह चाहेगा कि हम बीबी का खून कैसे पी सकते हैं और इसकी सारी की सारी हड्डियां और मांस कैसे निचोड़ सकते हैं। भाई भाई से चाहेगा कि भाई की मौत कब होगी, ताकि इसके हिस्से की जमीन हमारे हिस्से में आ जाए और इसकी बीबी के पास जो जेवर हैं, वे हमारे कब्जे में आ जाएं। बेटे, आदमी कितना खौफनाक होता चला जाता है, कह नहीं सकते। शक्लें तो भले आदमियों की सी हैं, पर शैतान हमारी अक्ल में और हमारे दिमाग में इस कदर हावी होता चला जा रहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रखा गया, तो आप देख लेना, 50 वर्ष के भीतर या 100 वर्ष के भीतर आदमी आदमी से डर जाएगा। अभी तो हम भेड़िए से डरते हैं, अभी तो हम शेर से डरते हैं, अभी तो हमको चीते से डर लगता है, अभी तो हमको सांप से डर लगता है, अभी तो हमको बिच्छू से डर लगता है, अभी तो हमको भूत प्रेत से डर लगता है। फिर एक आदमी दूसरे आदमी की शक्ल देख लेगा, तो कांप उठेगा और सोचेगा कि न जाने किस काम के लिए आया है।
आदमी को देखकर तब आदमी कांप जाएगा। मित्रों,
हम जानते हैं कि आदमी की इज्जत और आदमी की हैसियत अभी भी खराब हो गई है। आप जाइए किसी धर्मशाला में और कहिए कि भाई साहब, धर्मशाला में जगह है, हमें जगह दे दीजिए, हम ठहरना चाहते हैं।
धर्मशाला वाला सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका बिस्तर कहाँ है,
आपकी अटैची कहाँ है, बेडिंग कहाँ है। नहीं साहब, हमारे पास तो अटैची नहीं है और बेडिंग भी नहीं है। अच्छा, तो धर्मशाला में जगह खाली नहीं है।
क्यों?
क्योंकि आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आपके पास अटैची है, बिस्तर है, तो आपकी जमानत पर धर्मशाला वाला जान सकता है कि अगर यह व्यक्ति किसी की चप्पल लेकर भागेगा, तो देखता तो रहूंगा कि उसकी अटैची जमा है,
उसका बिस्तर जमा है।
आपकी तो कोई कीमत नहीं है, पर अटैची और बिस्तर की कीमत है।
अगर आपके पास यह नहीं है, तो आप धर्मशाला देख करके चले जाइए। आदमी ने आज अपनी इज्जत गंवा दी, आदमी की हैसियत खत्म हो गई, आदमी की औकात खत्म हो गई, आदमी का विश्वास खत्म हो गया। मित्रों, आदमी का विश्वास चले जाने की वजह से आज आदमी को अच्छे आदमी की प्यास है, तलाश है।
हर जगह हर आदमी चाहता है कि कोई एक आदमी ऐसा मिल जाता जिस पर विश्वास किया जा सकता है। हर आदमी पूछता है कि कोई ऐसा नौकर मिल जाता तो काम बन जाता। हर जगह हर आदमी कहता है कि कोई एक आदमी तो साथ में मिल जाता जिस पर भरोसा किया जा सकता। लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी,
एक आदमी की तलाश करना। बेटे, ऐसा आदमी मैं कहाँ से लाऊं? सब जगह तो जानवर मारे मारे फिरते हैं,
कीड़े मकोड़े मारे मारे फिरते हैं, पर आदमी तो कहीं है ही नहीं। नौकरी के लिए हर जगह आदमी मारे मारे फिरते हैं,
पर हर जगह नो वैकेंसी। निकालो, चलो भगाओ इसको, यह ऐसे ही आ गया।
नो वैकेंसी, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जानवर के लिए कहाँ जगह हो सकती है? जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है और इंसान के लिए? बेटे, इंसान के लिए हर जगह प्यास है, लेकिन ऐसा आदमी मुझको कहीं दिखाई नहीं पड़ता।
मित्रों, आदमी ने अपनी औकात और अपनी हैसियत गंवा दी।
स्वार्थपरता की जिस राह पर हम और आप चलते जा रहे हैं, अगर वही मंजिल है, वही तरक्की, वही अक्ल, वही समझ काम करती रही, तो आदमी आदमी के लिए खौफनाक हो जाएगा। वह बिच्छू से बड़ा और शेर से भी बड़ा खतरनाक हो जाएगा।
पापी आदमी, चालाक आदमी, बेईमान आदमी अपने खानदान वालों को भी खा जाएगा, भाई को भी खा जाएगा, बाप को भी खा जाएगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपने ग्राहक को खाएगा, अपने बॉस को खाएगा, सबको खा जाएगा। आदमी की स्वार्थपरता का यही सिलसिला यदि जारी रहा तो बेटे दुनिया में क्या हो जाएगा, मैं नहीं जानता।
मैं समझता हूँ कि स्वार्थों की और खुदगर्जी की बेदी पर दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरा ऐसा ख्याल है।
मित्रों,
दूसरी एक और भी बात है जिससे मुझे मालूम पड़ता है कि दुनिया नाश की ओर जा रही है। नाश की ओर जाने से क्या मतलब है?
हर आदमी की ख्वाहिश है कि हमारी संतान होनी चाहिए।
आज हर आदमी इतनी तेजी से संतान पैदा कर रहा है कि मुझे मालूम पड़ता है कि अब ये दुनिया का सफाया करेंगे,
अब ये आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
बेटे, जिस चक्रवृद्धि के हिसाब से औलादे पैदा होती हैं, वे समझते नहीं हैं।
चक्रवृद्धि किसे कहते हैं?
एक बैंक वाला बैठा हुआ है, उसने कहा कि गुरुजी,
जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन आप 1,000 रुपया जमा कर दें, तो 39 का जिस दिन होगा उस दिन उसको 1,25,000 रुपया मिल जाएगा।
हमने कहा कि कहाँ 1,000 रुपये और कहाँ 1,00,000 रुपये?
साहब, आप कागज और पेंसिल लेकर बैठ जाइए।
हम 10% ब्याज देते हैं और ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि के हिसाब से 7 साल में दूना हो जाता है, फिर दूने का दूना होता है। इस प्रकार उसने मुझे बता दिया कि 39 साल में 1,25,000 हो जाता है।
मित्रों,
मनुष्यों के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो औलादें पैदा हो रही हैं, वे दुनिया को मार डालेंगी, खा जाएंगी। आगे से न अनाज मिलेगा, न रोटी मिलेगी, न कपड़ा मिलेगा, न स्कूलों में जगह मिलेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी। आज हर आदमी का दिमाग इतना खराब है कि हर कोई पूछता है कि गुरुजी,
हमारे संतान होनी चाहिए, तो बेटे पड़ोसी के बच्चे को ले आ,
उनका पालन कर सकता है। नहीं महाराज जी,
मैं तो अपनी ही औलाद पैदा करूंगा।
औलाद पैदा करने के पीछे आदमी इस कदर पागल है कि समझता ही नहीं कि वह क्या करने जा रहा है, समाज के लिए क्या आफत पैदा करने जा रहा है, अपनी औरत का स्वास्थ्य कैसे खराब करने जा रहा है, अपनी आर्थिक कमाई का सफाया करने जा रहा है, समाज के लिए कैसे संकट पैदा करने जा रहा है। वह समझता ही नहीं कि अपने बच्चों का भविष्य कैसे खराब करने जा रहा है।
पागल आदमी दुनिया का सफाया करेगा और मार डालेगा।
बेटे, औलाद पैदा करने की हवस अगर इसी प्रकार से जारी रखी गई तो मैं जानता हूँ कि 50 वर्ष के भीतर नहीं तो 100 वर्ष के भीतर दुनिया का सफाया हो जाएगा।
मित्रों,
चक्रवृद्धि के हिसाब से ये चीजें ऐसी भयंकर और खतरनाक मालूम पड़ती हैं कि दुनिया मरने जा रही है, दुनिया नष्ट होने जा रही है और तबाह होने जा रही है। मक्खी मच्छरों के तरीके से ये सब मरेंगे, जिंदा नहीं रह सकते।
इस तरह की एक भयंकर तस्वीर हमारे सामने आती है, लेकिन एक सुनहरी तस्वीर भी हमारे सामने है,
और वह यह है कि हमने जो सपने देखे हैं, आज के हिसाब से सपने ही कहिए, तो जो सपने हमने देखे हैं, अगर वे सपने ठीक तरीके से साकार किए जा सके, इंसान को इंसान बनाया जा सका,
इंसान के अंदर इंसानियत पैदा की जा सकी, इंसान का चिंतन जरा सा ऊंचा उठाया जा सका,
आदमी के सोचने के तरीके और आदमी के कलेजे को थोड़ा सा चौड़ा बनाया जा सका, तो बेटे मजा आ सकता है, क्योंकि इसी शरीर के भीतर देवता निवास करते हैं, इसी अकल के भीतर भगवान निवास करते हैं।
जब हमारे और आपके भीतर देवता उदय होंगे, भगवान उदय होंगे, तो स्वर्ग का धरती पर अवतरण सुनिश्चित है। मित्रों,
भगवान और देवता जहां कहीं भी रहते हैं, उस सारे के सारे वातावरण को स्वर्ग कहते हैं। यह सपना अगर साकार हो गया तो फिर दुनिया कितनी अच्छी होगी, आप कल्पना कर सकते हैं।
पुराना जमाना था जब आदमी के पास न दिया सलाई थी, न उसके पास बिजली के पंखे थे,
न उस जमाने में डाकखाने थे,
न कहीं सड़कें थीं, न रेलगाड़ियां थीं, न टेलीफोन थे।
कुछ भी नहीं था
बेटे, तब इतने बढ़िया कपड़े भी नहीं थे और न ही इतनी बढ़िया सिलाई की मशीनें थीं।
फिर भी उस जमाने में आदमी कितने खुशहाल थे और कितनी मौज से रहते थे। आज तो हमारे पास इतने सामान हैं, इतने साधन हैं। इन साधनों के सहारे हम दुनिया में खुशी ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं, उत्साह उल्लास ला सकते हैं। अगर इनका ठीक तरीके से इस्तेमाल होने लगे, तब इस्तेमाल होना इस बात पर टिका हुआ है कि आदमी की ईमानदारी और समझदारी को क्या बढ़ाया जा सकता है।
बेटे,
एक ओर यह सपना है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं और दूसरी ओर विनाश के आधार खड़े हुए हैं जिसको हम नरक कह सकते हैं।
हमारा रथ दोनों के बीच में खड़ा हुआ है, सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापय मेच्युत। हमारा रथ एक ओर स्वर्ग की ओर, उत्थान की ओर तथा एक ओर नरक की ओर, पतन की ओर, विनाश की ओर खड़ा हुआ है।
हमारा जीवन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। ऐसे समय की कीमत आप समझ सकते हैं, ऐसे समय के बावत आप विचार कर सकते हैं। बेटे, मैं चाहता था कि आपकी अक्ल सही तरीके से यह समझ पाए कि हम एक महत्वपूर्ण समय में जिंदा रह रहे हैं।
अत्यधिक महत्वपूर्ण समय में जो आदमी जागरूक होते हैं, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है।
रात में चोर आते हैं और घर में चोरी हो जाती है, तो जो जगा हुआ होता है चौकीदार सबसे पहले उसको ही पकड़ते हैं। उससे पूछते हैं, क्यों रे,
तू यहाँ का चौकीदार है? हाँ साहब, चोरी हो गई।
लगता है तू भी चोरों से मिला हुआ है और चोर पकड़कर यहाँ लाया है। नहीं साहब, हम तो इधर घूम रहे थे और दरवाजे पर बीड़ी पी रहे थे। चोर तो दीवार फांद कर आया होगा। नहीं, जब तेरे जिम्मे चौकीदारी थी और तू जगा हुआ था, तो तूने चोरी कैसे हो जाने दी? नहीं साहब, हम अकेले ही थोड़े हैं, इस घर में तो 22 आदमी रहते हैं।
सबको गिरफ्तार कीजिए, वे तो सो रहे थे।
क्यों साहब, आपको मालूम है कि चोरी कब हुई थी? हम तो सो रहे थे, खर्राटे भर रहे थे, हमें कुछ मालूम नहीं।
अच्छा भाई,
इन्हें तो रिहा कर दो। अच्छा जगा हुआ कौन कौन था?
बुढ़ा जगा हुआ था साहब, आंख हमारी तो खुल गई थी।
हमें मालूम पड़ गया था कि दीवार में खटखट हो रही है, पर डर के मारे हम चुपचाप पड़े रहे।
अच्छा, इस बुढ़े को पकड़ लो,
इसे भी साथ साथ ले चलो, क्योंकि यह कह रहा है कि हम जगे हुए थे। अच्छा देखो, यह भी कह रहा है कि हमको मालूम था कि ऐसा हो रहा है और हम खांसते रहे, पर हम कर क्या सकते थे।
सुनकर हम भी चुपचाप पड़े रहे।
देखो, यह भी बड़ा मक्कार है।
इस बुढ़े को भी पकड़कर ले चलो, बुढ़े को गालियां दो, गाल पर चपत लगाओ कि क्यों रे,
तूने क्यों नहीं जगाया। बेटे, बुढ़े की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी जीवात्मा में जागृति का वह अंश है जिसमें कि आप समय को समझ सकते हैं, देश को समझ सकते हैं। अगर समझते न होते तो यहाँ क्यों आते? पहले आप यहाँ क्यों नहीं आए? यह इस बात का सबूत है कि आप जागृत आत्मा हैं। आदमी बिना काम के तो पेशाब करने भी नहीं जाता, और आप ज्ञान पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए अपना काम खर्च करके और अपना पैसा खर्च करके यहाँ आए हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप जगे हुए आदमी हैं और आप समय को समझते हैं, भगवान को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं और मानवीय भविष्य को समझते हैं। इसलिए इन सबूतों की वजह से मैं यह कहता हूँ कि आप इस समय को समझिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए।
मित्रों,
मेरा आपसे परामर्श नंबर 2 यह है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं,
आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। युग जब कभी भी बदलते हैं तो भगवान कुछ विशेष व्यक्तियों को भेजते हैं उस समय की जिम्मेदारियां संभालने के लिए, और वे विशेष व्यक्ति अकेले उस कार्य को संपन्न नहीं करते,
उनके साथ में दूसरे सहायक भी काम करते हैं। किसी जमाने में रामचंद्र जी आए थे जब दुनिया में ऐसी ही समस्या थी जैसी कि आज है।
समस्याएं हर समय एक ही रहती हैं,
उनके स्वरूप बदलते रहते हैं, स्वरूप अलग अलग तरह के होते हैं, पर समस्या एक ही रहती है। आज की समस्या मनुष्य जाति के लिए दूसरे तरीके से है, उस समय में मारकाट के तरीके से थी,
राक्षस खा जाते थे।
अब हम खाते तो नहीं हैं, पर अब हमने दूसरा तरीका निकाल लिया है। अब हम दूसरों को चूस लेते हैं। चूसने और खा लेने में क्या फर्क होता है? बेटे, चूसने और खा लेने में थोड़ा फर्क होता है। खाने में क्या होता है? इसमें आदमी का सफाया कर डालते हैं, मार डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। इसको मार डालना कहते हैं।
चूसना,
चूसना उसे कहते हैं जैसे जोंक खून तो पी जाती है, आदमी को मार डालती है, पर वह जिंदा रहता है। आज की लड़ाइयां चूसने की लड़ाइयां हैं।
आज का रिवाज चूसने का रिवाज है।
आज मारकाट का जमाना नहीं है, हत्या करने का नहीं है। अरे साहब, कौन हत्या करेगा? हत्या करके भी खून निकालना है और चूस करके भी खून निकालना है। इसलिए आज आदमी समझदार है। आज चूसने का धंधा है, लेकिन तरीका वही है।
बेटे,
रावण के वक्त में अब के वक्त में कोई खास फर्क नहीं है।
मित्रों, तब समय बैलेंस ठीक करने के लिए भगवान रामचंद्र जी को भेजा गया था। वे अकेले नहीं आए थे, उनके साथ में कई आदमी आए थे। कौन कौन आए थे?
देवताओं ने कहा था कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इतने बड़े काम के लिए, इतने लंबे क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ेगी। देवताओं ने कहा कि मनुष्य के शरीर में जन्म लेना चाहिए, परंतु मनुष्य कितने बेईमान हैं कि वे अपने मतलब की वजह से मतलब रखते हैं।
आदमी जहां अपना मतलब देखेगा वही काम करेगा।
इसलिए देवताओं ने कहा कि हम मनुष्य के शरीर में जन्म नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य के रूप में हम जन्म लेंगे तो हमारी भी मिट्टी पलीत हो जाएगी, इसलिए हम किसी अन्य योनि में जन्म लेंगे। देवताओं ने रीछ और वानरों की शक्ल में जन्म लिए थे। इंसान की शक्ल से उन्होंने भी नफरत की और कहा कि इंसान की अपेक्षा हैवान अच्छा है। वास्तव में आज इंसान शैतान हो चला है और हैवान अपनी जगह पर हैवानियत पर टिका हुआ है।
आदमी ने इंसानियत भी गंवा दी, हैवानियत भी गंवा दी और शैतानियत पर उतारू हो गया। बेटे,
हैवान अपनी जगह पर टिका हुआ है, इसलिए देवताओं ने समझा कि हम हैवान में जन्म लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हम कम से कम अपनी जगह पर तो टिके रहेंगे। वे रीछ हो गए, बंदर हो गए और कौन कौन हो गए?
गिद्ध हो गए, जटायु हो गए और उन लोगों ने रामचंद्र जी के साथ काम किया। श्री कृष्ण भगवान अकेले आए थे? नहीं बेटे, अकेले नहीं आए थे, उनके साथ बहुत सारे आदमी आए थे। कौन कौन आए थे?
पांच देवताओं ने पांच पांडवों के रूप में अवतार लिया था। आपको शायद मालूम होगा कि कुंती ने पांच देवताओं का आह्वान किया था और पांच देवताओं ने अपने नुमाइंदों के रूप में अपनी पांच संतानें पांच पांडवों के रूप में भेजी थी। और ग्वाल घटाव बालों के रूप में देवता आए थे। जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया था तो उसे उठाने के लिए ग्वाल घटाव बाल आए थे, गोप लोग आए थे और वे सभी कान्हा के काम में मददगार हुए थे।
वे क्या मानव थे?
नहीं, वे सभी देवता थे।
मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने सारा काम अकेले नहीं किया था।
गोवर्धन उठाने से लेकर महाभारत तक के कार्यों में ढेरों आदमियों ने मदद की थी।
वे कौन थे?
श्रेष्ठ काम के लिए जिसमें मुसीबत दिखाई पड़ती हो, जिसमें घाटा दिखाई पड़ता हो, जिसमें नुकसान दिखाई पड़ता हो, ऐसे काम में जो आदमी शरीक होते हैं उनका नाम देवता है। जिस काम में नफा दिखाई पड़ता हो उसमें तो कोई भी शरीक हो सकता है। कहिए साहब,
खूब नफा होने वाला है तो फिर हमको भी शेयर होल्डर बना लीजिए।
बेटे, हमारी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है।
नहीं गुरुजी,
फिर तो हम आपके साथ नहीं आ सकते।
बेटे, कुछ पैसा दे दे, शायद तुक्का लग जाए और हमारी कंपनी चल जाए।
नहीं महाराज जी,
अब आपको तो घाटा पड़ने वाला है।
घाटे की कंपनी में कोई शामिल नहीं होना चाहता। घाटे की कंपनी में केवल देवता सम्मिलित होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष नुकसान दिखाई पड़ता है।
गांधी जी के साथ भी देवता आए थे जिन्होंने अपनी जान दे दी। भगवान बुद्ध के साथ भी देवता आए थे जो गल गए, जो मर गए और जिन्होंने अपनी हड्डियां गला दी और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
अपने को समाज के लिए, मानवता के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए गला दिया। बेटे, देवताओं की पहचान यही होती है।
मित्रों,
देवता गलने के लिए आते हैं, देने के लिए आते हैं। देवता उन्हें कहते हैं जो दिया करते हैं और लेने के लिए जो आते हैं, वे तो लेवता होते हैं। बेटे, लेवता जो दैत्य और जायंट हैं, जिनका पेट बहुत बड़ा है। खाने के लिए, बड़े होने के लिए, अमीर बनने के लिए, अपनी हवस और तमन्ना पूरी करने के लिए जो आते हैं, वे दैत्य और जायंट हैं। जो आदमी गलने के लिए, परेशान होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, कष्ट सहने के लिए, त्याग करने के लिए आते हैं, वे देव होते हैं। देव भगवान के साथ आए थे और उनके साथ काम करते रहे। बेटे, आपसे मैं यही कहने वाला था कि अगर आपकी अक्ल कुछ काम दे, अगर आपको कुछ समझ आए, तो आपको यह अनुभव करना पड़ेगा कि आप देवताओं की संज्ञा में से आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम और आप अखबारनवीश नहीं हैं। हम किताब पढ़ने वाले, छापने वाले और अखबार छापने वाले नहीं हैं और आप पाठक नहीं हैं। कितने सारे अखबार निकलते हैं और आप उन्हें पढ़ा करते हैं।
आपको उसके संपादक का नाम मालूम है?
अखबार तो बहुत छपते हैं। कौन कौन से छपते हैं?
इंडियन एक्सप्रेस के संपादक का नाम बताइए। गुरुजी,
हमें नहीं मालूम।
हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स छपता है, उसके संपादक का नाम बताइए।
हमें संपादक का नाम नहीं मालूम। क्या मतलब है? बस अखबार पढ़ते हैं।
मित्रों,
इसी तरह सैकड़ों व्याख्यानदाता हैं और सैकड़ों संत वक्ता भी आते हैं।
आपने सैकड़ों व्याख्यान सुने होंगे।
संतों के सुने होंगे, बाबाजी के सुने होंगे, रामायणियों के सुने होंगे। आपको उनके नाम मालूम है, किसी से आपका लगाव है, उनसे कोई कशिश है, आपके और उनके बीच में कोई मोहब्बत है, बेटे कोई मोहब्बत नहीं है। रोज ही हम सुनते हैं, रोज ही पढ़ते हैं, पढ़ने से और सुनने से क्या हो सकता है। हमारे और आपके बीच में एक ऐसी कशिश है जो हमको और आपको जोड़े हुए है, और मैं समझता हूँ कि जब तक हम और आप जिंदा रहेंगे तब तक यह कशिश, हमारा यह चुंबकत्व और हमारा मैग्रेज्वेल लेने वाला है। हम आपसे अलग नहीं हो सकेंगे और आप हमसे अलग नहीं हो सकेंगे। हमारा और आपका रिश्ता बहुत मजबूत है।
यह कौन सा रिश्ता है बेटे?
यह हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं।
आप हमारे कोई भाई भतीजे नहीं होते।
हमारे रक्त के रिश्ते भी नहीं हैं। आपके और बहन भांजियों से कोई रिश्ता भी नहीं है हमारा आपसे, लेकिन उससे भी मजबूत रिश्ता है जो जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ चला आता है और वहां से चला आता है जहां से हमको भी भेजा गया है और आपको पीछे भेजा गया है।
मित्रों,
अगर आप इस रिश्ते को समझ सकते हो तो आपको जरा विचार करना पड़ेगा कि समय क्या चाहता है, महाकाल क्या चाहता है, युग क्या चाहता है,
देव शक्तियां क्या चाहती हैं
और भगवान क्या चाहते हैं। भगवान जो चाहते हैं उस काम को करने के लिए हमारी आगे वाली लाइन पर चलने वाले मार्गदर्शक हमको कहां लेकर चलना चाहते हैं,
वहां हमको चलना चाहिए कि नहीं, यह आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आपके पास ईमान हो तो, भगवान हो तो।
अगर आपके पास ईमान भी नहीं है और आपके पास भगवान भी नहीं है तब तो बेटे मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है। यदि ईमान और भगवान हो तो आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या हैं, समय क्या है। एक और बात आपको जाननी पड़ेगी कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं।
आपको अपनी जिम्मेदारियों को अनुभव करना पड़ेगा। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, युग को बदलने की जिम्मेदारियां हैं,
मनुष्य जाति के भाग्य के नए निर्माण की जिम्मेदारियां हैं और अपने जीवन को अजर अमर बनाने की जिम्मेदारियां हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, घटिया आदमी के तरीके से जिएंगे, तो बेटे मुझे क्लेश ही होगा, दैख ही होगा और मैं समझूंगा कि मेरा और आपका रिश्ता बेकार चला गया और भगवान ने मेरे साथ आपको जोड़ा था तो उसका कोई फायदा न हो सका।
मित्रों, आप समय को समझिए, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझिए।
क्या इन जिम्मेदारियों को नहीं समझते? केवल उन्हीं जिम्मेदारियों को समझते हैं जिनको कीड़ा समझता है, मकोड़ा समझता है। आप कीड़े और मकोड़े के तरीके से जिएंगे या कीड़े मकोड़े के तरीके से जीना चाहते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? कीड़े मकोड़े में और आदमी में क्या फर्क है बेटे? वही कसौटियां हैं जिससे हम कीड़े मकोड़े और आदमी में फर्क करते हैं।
क्या फर्क है?
कीड़े मकोड़े दो काम के लिए जीते हैं, एक है पेट को भरने के लिए और दूसरा है औलाद पैदा करने के लिए।
बस जानवर के आगे दो ही उद्देश्य हैं, तीसरा और कोई उद्देश्य नहीं है।
और आदमी? आदमी क्योंकि समझदार है इसलिए भूख का उसने जो स्वरूप बना लिया है उसका स्वरूप पैसा बना दिया है। जानवर पेट भर लेता है और खत्म कर देता है। चींटी पेट भर लेती है और थोड़ा बहुत अपने बिल में जमा कर लेती है और खत्म कर लेती है। क्योंकि हम समझदार आदमी हैं इसलिए हमने उसे पैसे के रूप में बदल दिया है, लोभ बना दिया है। लोभ और भूख में कोई खास फर्क नहीं है।
मित्रों,
पेट भरना और पैसा जमा करना दोनों का उद्देश्य एक ही है, एक विस्तृत रूप में है और एक छोटे रूप में है। आप पेट के लिए जिएंगे ना, पेट के अलावा भी कोई लक्ष्य है आपका क्या? पैसे के अलावा भी कुछ विचार कर सकते हैं क्या? पैसे के अलावा भी कुछ हवस है क्या? पैसे के अलावा भी कोई लक्ष्य है आपका?
बेटे, आपको विचार करना पड़ेगा।
अगर आपका लक्ष्य वही है तो मैं आपको कीड़े की संज्ञा दूंगा, मकोड़े की संज्ञा दूंगा और जानवर की संज्ञा दूंगा और हैवान की संज्ञा दूंगा। फिर आपको मैं इंसान की श्रेणी में नहीं लूंगा। इंसान के पास कुछ लक्ष्य होते हैं, आदर्श होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ यह मनुष्य का शरीर है। यह किसी खास मकसद के लिए मिला हुआ है। अगर आप उस मकसद को नहीं समझते तो अपने इंसान के रूप में मिली हुई जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। अगर आपने जीवन में कोई सिद्धांत नहीं लिया, आप किसी आदर्श के लिए काम नहीं आ सके, तो समझिए कि आपने इंसान के रूप में मिली जिंदगी को धिक्कार दिया। अगर आप पेट ही भरते रहे और पैसा ही कमाते रहे तो आपके ऊपर धिक्कार है
बेटे।
आप एक और भी काम करते रहे, आप पर एक और भी शैतान हावी रहा जो प्रत्येक जानवर पर हावी होता है। जब कोई भी जानवर जवान होता है तो जवान जानवर के ऊपर एक बुखार आता है और एक नशा आता है। वह पागलों के तरीके से ब्याह शादी करने के लिए घूमता है।
कुत्ते को देख लीजिए, कुतिया को देख लीजिए, सब जानवरों को देख लीजिए, उसे पागलपन का दौरा पड़ जाता है।
जब तक उसके सिर पर मुसीबत नहीं आ जाती तब तक चैन नहीं पाते। जब तक पेट में बच्चा नहीं आ जाता और दाल आटे का भाव मालूम नहीं हो जाता, तब तक वे हवस की पूर्ति में ही घूमते रहते हैं। यही हैसियत इंसान की भी है कि शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, काम वासना की पूर्ति करेंगे। यह एक हवस ऐसी है जो कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे बड़े जानवरों में समान रूप से पाई जाती है। अगर आपकी भी हवस वहीं तक सीमित है, तो बेटे, मैं आपको इंसान नहीं कह सकता। शक्ल आपकी इंसान की हो तो इससे क्या बनता है। आप शक्ल से इंसान हो, पर ईमान से इंसान नहीं है, कसौटी के हिसाब से इंसान नहीं है, तो मैं उसे इंसान नहीं कह सकता।
मित्रों,
आपकी जिंदगी के लेखे जोखे में, बही खाते में अगर दो ही खाते हैं, एक पेट और एक औलाद, एक वासना और एक तृष्णा, एक लोभ और एक मोह, यही दो चीजें हैं, तो आप इंसान नहीं कहला सकते। और इंसान को जो आनंद आना चाहिए, इंसान की जिंदगी में जो खुशी हासिल होनी चाहिए, इंसान की जिंदगी का जो आनंद आदमी को मिलना चाहिए, वह आपको नहीं मिल सकता। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आपका चिंतन उच्च स्तरीय नहीं है और आपके क्रियाकलाप में किसी आदर्शवादिता का समावेश नहीं है, आप कीड़े मकोड़े की तरीके से जीते हैं, हैवान के तरीके से जीते हैं, शैतान के तरीके से जिंदा हैं, तो बेटे मैं आपके लिए क्या कह सकता हूँ।
इसलिए मित्रों,
इस जमाने में मैं आपसे कुछ यही बातें कहने वाला था। मेरे मन में बहुत कसक थी और बड़ा डर था कि कदाचित आपको समय की बात, आपकी जिम्मेदारी की बात, समय की बात मैं समझा सकने में समर्थ हो सका हूँ तो मजा आ जाए।
आप भी धन्य हो जाएं और मैं भी धन्य हो जाऊं।
बेटे, मैंने आपको संक्षेप में कह दिया।
साथियों,
इन दिनों जबकि आप इस शिविर में रह रहे हैं, तो मैंने बराबर कोशिश की है और आपको यह बातें समझाता रहा हूँ और इन्हीं बातों को कहने के लिए दिन रात आपके पीछे लगा रहा हूँ और समझाता रहा हूँ। आप कहेंगे कि नहीं, आप तो नहीं लगे रहे। शुरुआत में एक दिन हम आपके पास गए थे, फिर आपने कहलवाया था कि जो कोई मिलना चाहे मिल सकता है, पर हम तो नहीं गए। आप बहुत व्यस्त मालूम पड़ते हैं और आपके यहाँ आने जाने की मनाही है।
इसलिए हमारा मन तो आया था कि गप्पे हाँकेंगे, परंतु वहाँ लिखा रहता है कि 15 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो सकती। काम की बात कीजिए और भागिए।
इसलिए जब हम आपके पास बेकार की बातें करने गए, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी और आपने ज्यादा देर बैठने भी नहीं दिया। आपने बैठते ही पूछ लिया, कहिए भाई साहब,
कैसे आए, बताइए। हम तो चाहते थे कि लंबी चौड़ी कहानी कहेंगे,
अपने नानी मौसी के यहाँ की और वहाँ की गप्पे हाँकेंगे, पर आपने कहा चल यहाँ से, मेरा एक एक मिनट कीमती है, काम की बात कर और चल भाग यहाँ से। नहीं साहब, हम तो इसलिए आए थे कि वहाँ की बात कहेंगे, पर आपने कहा कि भाड़ में गई बात और ऊपर से जा तू, काम की बात कर, बेकार की बात करेगा तो भगा दूंगा।
मित्रों,
आपको मेरा रुख, मेरा तरीका और मेरे समय की कीमत मालूम है, इसलिए आप दोबारा तिबारा न आ सकें और कह सकते हैं कि आपकी और हमारी बात नहीं हो सकी। बेटे, मैं जानता था कि तू क्या बात करने वाला है, तेरी बात का मुझे पहले से ही पता था और पहली बार में ही मैंने तुझे जवाब भी दे दिया था। आज फिर बताता हूँ कि तेरी बात बहुत छोटी और उसके जवाब भी बहुत छोटे हैं, रत्ती भर के हैं। तेरी बात क्या है, बौने आदमी और बच्चों की चिंता क्या हो सकती है।
बच्चा हरदम कुछ न कुछ मांगता रहता है कि कुछ लाइए।
क्या मांगता है, कोई अच्छी चीज मांगता है।
पिताजी, हमको पास करा दीजिए, हमें लेमन जूस ला दीजिए, टॉफी ला दीजिए, गुब्बारा ला दीजिए, जेल की चाबी ला दीजिए, गुड़िया ला दीजिए, खिलौना ला दीजिए।
आप यही मांग सकते हैं, आपकी अक्ल और आपकी समझ इतनी छोटी है, इस हिसाब से मैं किसी बड़ी चीज की आशा आपसे नहीं कर पाता। आप इन्हीं 3-4 बातों की शिकायतें ले करके आएंगे और इसके सिवाय आपके पास कोई चीज नहीं होगी, इसलिए मैंने समझा कि आपका समय खराब न करूं। आपने लिखकर भी दे दिया था और बताया भी था, अगर आपने न बताया हो तो आप नंबर से आइए, पूछते चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता चलूंगा कि आप ये कहने वाले थे। आपकी बात मुझे मालूम है, तो फिर मैं क्यों समय खराब करूं। आप तो केवल वही 3-4 बातें कह सकते हैं, कोई 5वीं बात आपके पास नहीं है।
मित्रों,
क्या बातें हैं।
यही की सेहत ठीक कर दीजिए।
हमको बुखार आता है, हमको पाइल्स की शिकायत है, हमको दमे की शिकायत हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है। ठीक है, आप अपना चाल चलन ठीक कर लें, आहार विहार पर संयम करें। नहीं महाराज जी, हम तो यह सब नहीं कर सकते, पर आप आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ बेटे, हम आपको एस्प्रिन की गोली देंगे, APC की गोली देंगे, हमारे पास है, इससे क्या हो जाएगा।
इससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगी।
सिर में दर्द होता है तो APC
की गोली खा लीजिए। तो महाराज जी,
मेरा सिर दर्द बंद हो जाएगा, नहीं बेटे, सिरदर्द बंद नहीं हो सकता। फिर क्या कर देंगे?
बेटे, हम जादू कर देंगे और चमत्कार कर देंगे।
जादू किसे कहते हैं?
आपका अभी सिर दर्द हो रहा है और अभी बंद हो जाए तो?
महाराज जी,
यह जादू है।
हाँ बेटे, हम जादूगर हैं। आपका बुखार बंद कर देंगे और हॉट की बीमारी बंद कर देंगे।
यहाँ से आप उछलते हुए चले जाएंगे, हंसते हुए चले जाएंगे।
महाराज जी,
फिर जिंदगी भर बीमार नहीं होंगे क्या?
बेटे, जाते ही 15 दिन पीछे फिर तुझे नई बीमारी हो जाएगी।
संयम तो रखता नहीं मूर्ख कहीं का, सारी की सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो जाएगी। जीभ पर काबू नहीं है, इंद्रियों पर काबू नहीं है, सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, संयम रखता नहीं है और हमसे कहता है कि स्वास्थ्य अच्छा कर दीजिए। हम स्वास्थ्य अच्छा नहीं कर सकते, बस जादू कर सकते हैं।
बेटे, तेरी एक बीमारी अच्छी कर देंगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। एक सुराख बंद कर देंगे, फिर महाराज जी पानी निकलेगा।
पानी तो निकलेगा कहीं से, कहाँ से निकलेगा?
बेटे, हम नहीं जानते।
चाहे दीवार फोड़कर निकले, चाहे छत फोड़कर निकले, परंतु हम छेद बंद कर देंगे और तुझे अच्छा कर देंगे।
हमको मालूम था कि आप क्या कहने आए हैं। आप यह कहने आए हैं कि गुरुजी,
हमारी आर्थिक समस्या हल कर दीजिए।
बेटे, हम जरूर कर देंगे, क्योंकि हम संत परंपरा के विद्यार्थी हैं। हमने हर एक की मदद करना जाना है और हम मदद करना जानते हैं।
मित्रों,
आप तो संत परंपरा के विद्यार्थी नहीं हैं।
कदाचित भगवान आपको संत परंपरा का विद्यार्थी बनाएगा, तब आपका भी ईमान हमारे जैसा हो जाएगा। फिर आप खाएंगे नहीं, हमेशा खिलाने की बात सोचेंगे।
संत खाता नहीं है, संत खिलाता है। संत खाता है तो उल्टी हो जाती है।
बेटे, एक बार ऐसा ही हुआ है।
जिन दिनों मैं अखंड ज्योति कार्यालय में वेदों का भाष्य कर रहा था, उन दिनों मेरे ऊपर बड़ी दिक्कत आ गई। मुझे बार बार चक्कर आने लगे, सिर गर्म होने लगा। लोगों ने कहा कि गुरुजी को मौसमी का रस पिला दीजिए।
बेटे, यह क्या कह रहा है?
गुरुजी, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैंने एक घूंट पी लिया। पहला घूंट पीते ही मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि किसी ने जहर का प्याला भरकर पिला दिया। मुझे विचार आया कि गायत्री तपोभूमि पर इतने आदमी रहते हैं जो अपना घर छोड़कर आए हैं,
मेरी वजह से इस्तीफा देकर के आए हैं और रूखी रोटी खाते हैं, गुजारा करते हैं।
फिर मैं कैसे मौसमी का रस पीऊंगा?
मेरे लिए धिक्कार है। मैंने मौसमी का रस फेंक दिया और यह कहा कि आइंदा यह गलती मत करना और आइंदा ऐसे रस मत देना।
मित्रों, जिस दिन आप संत परंपरा के विद्यार्थी होंगे तो आप खाने की अपेक्षा खिलाने की कोशिश करेंगे।
आज तो आपका पेट इतना बड़ा है कि न आपको हया है न शर्म। समाज में कितनी गरीबी, कितनी कंगाली, कितना दैख, कितना दर्द पड़ा है। संस्कृति की सेवा के लिए कितने पैसे की जरूरत है, समय की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, पर आप हैं जो अपनी हविश पूरी कर नहीं सकते। औलाद के लिए जमा करेंगे।
गुरुजी, औलाद के लिए आशीर्वाद दीजिए।
धिक्कार है।
मित्रों,
मैं जानता हूँ कि आप कितनी छोटी हैसियत के आदमी हैं। अध्यात्मवादी को जैसा होना चाहिए था, उसकी तो आपको हवा भी नहीं लगी है। आप तो पुजारी कहलाए जा सकते हैं, लेकिन आप अध्यात्मवादी नहीं हैं।
मैं आपको पुजारी की उपमा दे सकता हूँ।
पुजारी मंदिर में भी रहते हैं और आप अपने घर में पूजा करते होंगे, पर आप अध्यात्मवादी नहीं हो सकते।
आज नहीं तो अगले जन्म में कभी भगवान ने आपको अध्यात्मवादी बनाया तो आपका मन पिघल जाएगा।
मक्खन के ऊपर जब गर्मी पड़ती है तो वह पिघल जाता है। बेटे, हम सिद्ध पुरुष होने का दावा तो नहीं करते, पर हम संत परंपरा की राह पर चलने वाले विद्यार्थी का दावा करते हैं, इसलिए हमको हया है, शर्म है।
मित्रों, अध्यात्मवादी को क्या करना चाहिए?
हमारे पास अगर कुछ तप है, कुछ पुण्य है और हमने जप किया है, हमने कुछ अनुष्ठान किया है, अगर हमारे पास कोई चीज है, वह चाहे जो भी हो, चाहे पैसा हो, चाहे पुण्य हो, बेटे हम जरूर बांटेंगे। अगर हम उसको नहीं बांटेंगे और स्वयं खाएंगे तो हमारी संत परंपरा चली जाएगी और हम संत नहीं रह सकेंगे,
अध्यात्मवादी नहीं रह सकेंगे। हम चोर हो जाएंगे, हम चालाक हो जाएंगे, हम बाबाजी हो जाएंगे,
हम चमत्कारी हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे, लेकिन हम संत नहीं रहेंगे। इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। आपकी पैसे की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हम जी जान से कोशिश करेंगे, तो आप हमारी समस्या हल कर देंगे।
नहीं बेटे, आपकी कोई समस्या हल नहीं हो सकती। आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आपका खर्च करने का जो ढंग है उस पर आप काबू करेंगे नहीं, तो जो भी हम आपकी नौकरी में तरक्की करवा देंगे या व्यापार में फायदा करवा देंगे और आप खर्च उसी तरीके से करेंगे जैसे कि इस समय तक करते रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा?
उसका परिणाम वही होगा जो अब तक होता आया है। अब तक आप कंगाली में रहे हैं, गरीबी में रहे हैं, तंगी में रहे हैं, बीमारी में रहे हैं, बेकारी में रहे हैं और पैसे की शिकायत करते रहे हैं। सारी जिंदगी भर यही करेंगे और अगर पैसा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो भी आप यही शिकायत करेंगे, क्योंकि आपकी हविश और आपकी ख्वाहिश ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अभी आपके पास चिंता है, पीछे हविश आ जाएगी। चिंता से आप हैरान हुए तो क्या और हविश से हैरान हुए तो क्या, बात एक ही है। यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हम आपकी समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकते।
तो गुरुजी,
आप कोई सहायता नहीं कर सकते?
बेटे, हम जरूर करेंगे।
कैसे करेंगे? हमने आपको बता तो दिया है कि हमारे पास एनासिन की गोलियां हैं, एस्प्रो की गोलियां हैं और दूसरी गोलियां हैं, उसे आपको खिला देंगे और फिलहाल आपको अच्छा खासा कर देंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि आप और किस लिए आए थे।
हाँ गुरुजी, हमारे यहाँ संतान नहीं होती, संतान पैदा कर दीजिए।
बेटे, हम जरूर संतान पैदा कर देंगे। भगवान जी के यहाँ बहुत सारी संतान रखी हुई हैं।
एक दिन भगवान जी कह रहे थे, गुरुजी,
यह बीमारी, यह कबाड़ा इकट्ठा हो गया है,
किसी के हाथ इसको ढीला करा दीजिए।
हमने कहा कि हम करा देंगे। हमारे पास बहुत से पागल और बहुत से बेहुदे आदमी आते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमको संतान पैदा करा दीजिए। उनकी अकल को मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं संतान पैदा करा दूंगा।
तो ये क्या करेंगे, ये अभागे मरेंगे।
क्यों मरेंगे? क्योंकि जिस पैसे से ये अपनी सेहत बना सकते थे, अपनी औरत की सेहत बना सकते थे, अपने माँ बाप का कर्ज चुका सकते थे, अपने बहन भाइयों की सहायता कर सकते थे, अपने देश और धर्म, समाज और संस्कृति के लिए काम आ सकते थे, ये दुष्ट, और क्या कहूँ इन्हें, किसी का भी भला नहीं करेंगे।
उस नए पिल्ले को जो गंदगी खाएगा, ऐसा एक पिल्ला लाकर हम इसके सामने पटक देंगे। बस इस तरह रोज बच्चे पैदा हो जाएंगे।
बेटे, बच्चा तो आपके पैदा हो जाएगा, लेकिन बच्चा पैदा होने से जो आपने ख्वाब देखा है वह पूरा नहीं हो सकता। जैसे घटिया आप हैं, उससे भी ज्यादा घटिया आपका बेटा होने वाला है।
मित्रों,
जैसे चालाक, स्वार्थी और बेईमान आदमी आप हैं, जिसके अंदर न दया है, न धर्म है, जिसमें न लोकमंगल की बात है, न परमात्मा की वृत्ति है, बस अपनी ही हविष हावी है, आपका बेटा इससे भी घटिया पैदा होगा और जो भी सलूक आपके साथ करेगा, थोड़ा है।
नहीं साहब, वह पिंडदान देगा। बेटे, वह आपको पिंडदान नहीं देगा, आपका पिंडदान।
बेटे, आपकी जेब में जो कुछ भी होगा वह और सब कुछ छीन ले जाएगा।
पिंडदान नहीं दे सकता।
संतान पैदा कर देंगे। हाँ, तेरी इच्छा है, कामना है तो हम पैदा कर देंगे।
और कोई कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना हो तो बताना।
नहीं महाराज जी, बस संतान की बात के अतिरिक्त लड़ाई झगड़े की बात, मुकदमे की बात बंद करा दीजिए।
हाँ बेटे, हम बंद करा देंगे।
तेरा मुकदमा चल रहा है तो उसमें तुझे जितवा देंगे।
लेकिन तेरे लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होंगे, वैर खत्म नहीं होंगे, क्योंकि तू जिसके साथ में भी व्यवहार करता है, दगा से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ, जलन से भरा हुआ, कुड़न से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ करता है।
इसलिए एक से झगड़ा बंद करा देंगे तो 99 फिर से खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मित्रों,
हमने कोई जरूरी नहीं समझा कि आपसे कोई विशेष बात कहें और आपकी बात को सुने। आपको अपनी बात आधा घंटे में पूरी करनी हो तो क्या, एक मिनट में करनी हो तो क्या, आपकी बात तो वही जहां की तहां है। हम आपकी बात का महत्व जानते हैं और हमने सारी जिंदगी भर यही पापड़ बेले हैं। लोग हमसे क्या कहेंगे और किस बात के लिए हमसे समय मांगते हैं? कोई न भगवान के लिए मांगता है, न देश के लिए मांगता है, न धर्म के लिए मांगता है, न पूजा के लिए मांगता है। वह तो वहां से शुरू करता है कि गुरुजी,
हमारा मन नहीं लगता,
परंतु जब तक बात समाप्त भी नहीं होने पाती तब तक यह कहता है कि महाराज जी,
हमारे यहाँ लड़का हो जाए।
बेटे, अभी तो मन न लगने की बात कह रहा था।
महाराज जी,
इसलिए कह रहा था कि शुरू में ही वह बात कह दूंगा तो आप कह देंगे कि बेटे, मैं तेरी चालाकी को बहुत दिनों से जानता हूँ।
नहीं महाराज जी, नौकरी में प्रमोशन करा दीजिए।
कितने का प्रमोशन करा दूं?
महाराज जी, 200 रुपये महीने का करा दीजिए।
अच्छा, 200 रुपये का प्रमोशन हो जाए तो तू मेरा कितने घंटे काम करेगा?
महाराज जी,
घंटे, आधा घंटे सप्ताह में एक काम कर दूंगा।
तब तो बड़ा महंगा पड़ेगा।
200 रुपये का नौकर रखेंगे तो 16 घंटे काम करेगा।
चल, तुझसे नहीं कराना है,
प्रमोशन की कीमत पर सारा काम करना चाहता है चालाक कहीं का।
मित्रों, आद्य शंकराचार्य को भगंदर का फोड़ा था, फिर भी वे बराबर काम करते रहे।
बिनोवा भावे के पेट में अल्सर की शिकायत है। वे 20 साल से अल्सर के मरीज हैं और इस बीमारी की हालत में भी काम करते रहते हैं।
आप बहाना मत बनाइए कि गुरुजी,
हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए तो हम शाखा चलाएंगे। बेटे, आपसे हमें शाखा का काम नहीं करवाना है। अगर वह बंद भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप इतनी ज्यादा शर्तें लगाते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी करें तो आप शाखा चलाएंगे, चालाक कहीं के।
बेटे, बेकार की बातें मत कर, हमें गुस्सा और आ जाता है। आप हमारे ऊपर जाल फेंकते हैं।
जाल फेंकना है तो मौनी बाबा के पास जा, जो भांग खाता है और अफीम खाता है।
हम तो भांग भी नहीं खाते, अफीम भी नहीं खाते, फिर हमारे ऊपर क्यों जाल फैलाते हो?
नहीं महाराज जी, हम तो आपसे ही बात कर रहे थे।
नहीं, हमसे बात मत कीजिए।
बेटे, हम आपकी बात को जानते हैं।
महाराज जी, फिर क्या बात हुई? हमारी बात समाप्त हो गई।
इसलिए कि हम आपके पीछे बराबर लगे रहते हैं। इस शिविर में अपनी बैखरी वाणी से तो नहीं, परा और पश्यंती वाणी से, मध्यमा वाणी से हमने यह कोशिश की है कि अगर आप अपने को समझ पाएं, जान पाएं, समय को देख पाएं, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझ पाएं, तो बेटे मजा आ जाए।
अगर आपका जीवन सार्थक हो जाए और हमारा सारा का सारा प्रयास सार्थक हो जाए तो मजा आ जाए, अन्यथा हमारे प्रयासों का कुछ मायने मतलब नहीं रह जाता।
अगर अपने इस प्रयासों में हमने वही पिसे हुए को पीसा तो हमारे ऊपर लानत है।
मित्रों,
अध्यात्म का जो वर्तमान स्वरूप है, इससे हमें कितनी खीज आती है, कितनी चिढ़ आती है, आप हमारा कलेजा चीरकर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक ओर तो हम अध्यात्म के भक्त हैं।
ऐसा अध्यात्म जिसके लिए हमने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर डाली।
बेटे, हमने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, जो कुछ हमारे बाप दादाओं की कमाई थी वह हमने लगा दी। कोल्हू के बैल के तरीके से हम 24 घंटे भी अभी भी पिसते हैं।
अध्यात्म हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, लेकिन वह अध्यात्म जो लोगों के सिरों पर हावी है, उस अध्यात्म से हमें चिढ़ है।
कौन सा अध्यात्म?
जिसमें देवी देवताओं को पागल और अहमक समझा जाता है। अहमक और पागलों से उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह के जाल बिछाए जाते हैं।
आज का अध्यात्म यही है।
इसी का नाम आज का अध्यात्म है। अमुक पूजा करेंगे, अमुक पाठ करेंगे और देवी से यह लाएंगे, देवता से यह लाएंगे, फलाने जी से यह लाएंगे, धमाके जी से यह लाएंगे और उससे अपनी जिंदगी में हेर फेर करेंगे।
जिंदगी तो मैं ऐसे जीऊंगा कि इससे भी घटिया होगी, इससे भी ज्यादा कमीना बनूंगा, इससे भी ज्यादा निकम्मा बनूंगा, इससे भी ज्यादा दुष्ट बनूंगा। अगर शंकर भगवान की कृपा से, संतोषी माता की कृपा से मुझे फायदा हो जाए तो फिर मेरी करामात और मेरा चमत्कार देख लेना, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे फिर मेरी चाल देख ले। पहले मुझे शंकर भगवान का वरदान तो दिलवा दीजिए, हनुमान जी का वरदान तो दिलवा दीजिए, साई बाबा का वरदान तो दिलवा दीजिए, आचार्य जी का वरदान तो दिलवा दीजिए, फिर देखिए कि मैं क्या करके दिखाता हूँ। फिर मेरा चमत्कार देख लेना, फिर मैं सारे मोहल्ले वालों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं वह काम करूंगा जो मेरी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा।
बेटे, मैं जानता हूँ, इसीलिए बच्चों, मैं आपसे तो कुछ कह नहीं सकता कि उसी जाल जंजाल में आपको फंसाए फिरूं।
उसी के लिए मंत्र तंत्र बताता फिरूं, उसी के लिए क्रिया कृत्य बताता फिरूं और यह समझाता फिरूं कि यह किया कीजिए तो यह मिलेगा, यह किया कीजिए तो अमुक मिलेगा, इस देवता को पूजिए तो यह मिलेगा, यह मंत्र जपिए तो यह मिलेगा।
बेटे, यह धंधा मेरा नहीं है और मुझे इन बातों से चिढ़ है।
क्यों चिढ़ है?
इसलिए कि मैंने हजारों बार कहा है, लाखों बार कहा है कि आदमी के ईमान को बदल देने का नाम अध्यात्म है।
ईमान को बदले बिना कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता, कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकता,
कोई सिद्धि प्रकट नहीं हो सकती और चमत्कार नहीं आ सकता।
किसी आदमी के भीतर चमत्कार तभी आएगा
जब वह अपने ईमान को बदलने की कोशिश करेगा,
अपने चाल चलन को बदलने की कोशिश करेगा, चिंतन को बदलने की कोशिश करेगा।
जो अपने चिंतन को नहीं बदलना चाहता, अपने चाल चलन को नहीं बदलना चाहता, अपने दृष्टिकोण को बदलना नहीं चाहता और अपना स्तर जैसे का तैसा रखना चाहता है, जो केवल क्रिया कृत्यों के द्वारा, कर्मकांडों के द्वारा देवी देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, चमत्कार पाना चाहता है, तो यह असंभव है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइएगा।
मित्रों,
अपने यहाँ लाखों मंदिर ऐसे हैं जिनमें पुजारी रहते हैं और सवेरे से शाम तक पूजा करते हैं। मुझे कोई एक पुजारी बताइए कि उसके पास क्या क्या करामात है और क्या क्या सिद्धियां हैं और क्या क्या भगवान की कृपा है।
संत, बाबा जी, माला घुमाने वाले आदमी कुंभ मेले से लेकर हर जगह बैठे हुए हैं।
भीख मांगते हुए, चप्पले चुराते हुए, दूसरों की बहन बेटियों को बेइज्जत करते हुए हर जगह पाए जाएंगे।
इनमें से आप कोई एक संत ले आइए, एक महर्षि ले आइए। चोर उचक्के हर जगह मारे मारे फिरते हैं।
बेटे हम क्या कर सकते हैं?
महाराज जी,
आपने क्रिया कृतियों की महत्ता क्यों नहीं बताई?
हम यही पूछने आए थे और विधि विधान पूछने आए थे।
बेटे, एक ही विधि है, एक ही विधान है, और वह है कि अपने आप का स्तर ऊंचा उठाइए,
अपने सोचने का तरीका उच्च स्तरीय बनाइए,
अपने जीवन जीने के क्रियाकलाप में कुछ शानदार परिवर्तन कीजिए।
नहीं महाराज जी, यह झगड़ा तो हमसे नहीं हो सकता, मैं क्रिया कृत्य कर लूंगा।
आप चाहें तो मुझसे कोई क्रिया करा लें।
बेटे, मुझसे क्यों पूछता है? मेरे जैसे हजारों बैठे होंगे जो आपको कोई न कोई बहाना, कोई न कोई विधि, कोई न कोई तरकीब बता देंगे कि ऐसे प्राणायाम किया करें।
यह कोई भी बता देगा कि नाक में रस्सी पिरो लेना,
इस तरह के खेल खिलौने कोई भी बता देगा।
मित्रों, हमारा अध्यात्म महंगा है।
हमारे अध्यात्म में गहराई है, कठोरता है। मेरा अध्यात्म वह है जिसमें आदमी को तिलमिलाना पड़ता है।
तिलमिलाने वाले अध्यात्म की आदमी कीमत पाता है।
मैं यकीन दिला सकता हूँ कि इसमें आदमी तिलमिलाता तो है, पर पाता जरूर है। यह बात मैं 100% सच कह सकता हूँ और गारंटी से कह सकता हूँ और शपथपूर्वक अपने अनुभवों की साक्षी देकर कह सकता हूँ कि अगर आपने महंगा अध्यात्म खरीदा है तो आप महंगी सिद्धियाँ पाएंगे,
महंगे चमत्कार पाएंगे, महंगा आनंद पाएंगे और महंगी शांति पाएंगे, अगर आप कीमत चुकाएंगे तो। और अगर कीमत नहीं चुकाएंगे और ये खेल खिलौने करेंगे तो आप अपने मन को समझा भले ही लें, मन को बहका भले ही लें।
आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन आप कुछ पा नहीं सकेंगे। शीशे के तरीके से यह बात स्पष्ट है कि आप जाने तो, न जाने तो, माने तो न माने तो, यह आपकी मर्जी के ऊपर है।
मित्रों,
इस शिविर में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता रहा और जब आप विदा होने वाले हैं तब मैं अध्यात्म के कुछ कर्मकांड आपको सिखाने वाला था। मैं समझता था कि आप कर्मकांड करते तो नहीं हैं, पर आपकी जानने में रुचि बहुत रहती है। कुंडलिनी आप जगा तो नहीं सकते, पर उसे जगाने में आपकी रुचि रहती है। आप पंचकोश को जगाने के इच्छुक तो नहीं हैं, पर आप जानने के इच्छुक अवश्य हैं,
क्योंकि रहस्यवाद हर एक को अच्छा लगता है। हाँ साहब,
यह बात तो पड़ी थी कि रहस्य जानने की इच्छा हर एक की होती है, लेकिन बेटे आपकी रुचि तो कर्मकांड के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। चलिए कर्मकांडों की बात बताकर अपनी बात खत्म करते हैं। अब हम फिर से वहीं पर आ जाते हैं जिस काम के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। कर्मकांड तो वही है जो मैंने गायत्री के संबंध में बताया है। गायत्री मंत्र इतना बेहतरीन मंत्र है कि इसमें अगर आप श्रद्धा का पुट मिला दें तो इसमें गजब के चमत्कार दिखाई दे सकते हैं।
एक चेला था,
उसने अपने गुरु के चरणों को धो करके उस पानी को एक शीशी में भर लिया था। जो कोई भी दुखी आदमी आता उससे वह कहता कि अच्छा भाई पानी लाओ, हमारे पास एक ऐसा जादू का जल है कि इसकी एक बूंद उस पानी में डाल देंगे तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अपने गुरु के चरणों की धोवन का एक बूंद उस पानी में डाल देता,
उसे पीने वाले का बुखार दूर हो जाता, खांसी अच्छी हो जाती,
लोगों के कष्ट दूर हो जाते।
एक दिन उसके गुरुजी आ गए।
गुरुजी को बुखार आ गया तो उन्होंने कहा कि बेटे, तेरी बहुत प्रशंसा सुनी है, तू कोई ऐसी दवाई जानता है जिससे सब मरीज अच्छे हो जाते हैं?
हाँ महाराज जी,
मेरे पास ऐसी दवा है। आप बैठे रहिए शाम तक, देखिए हमारे पास हजारों मरीज आते हैं और मैं उन्हें एक बूंद पानी देता हूँ और सबका उद्धार हो जाता है।
बेटे, वह दवाई क्या है?
महाराज जी,
वह आपके चरणों का जल है।
हमारे चरणों का जल? हाँ।
आज हमें तो बहुत जोर का बुखार है। जब चेला चला गया तब उन्होंने अपने पैरों को धोया और उसे पी लिया।
जल ज्यादा हो गया।
बेटे, हमने तो सारा पानी अपने आप पी लिया और तू तो एक बूंद डालता है, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ।
चेले ने कहा, महाराज जी,
आपके चरणामृत में और हमारे चरणामृत में फर्क है। हमारे चरणामृत में श्रद्धा जुड़ी हुई है और आपके चरणामृत में क्रिया जुड़ी हुई है। चमत्कार क्रिया में नहीं, श्रद्धा में है।
मित्रों,
आप तो माला में, क्रिया में विश्वास करते हैं, न तो आपको गुरु में विश्वास है और न भगवान में, न गायत्री माता में विश्वास है। आपको लोभ पर विश्वास है, मोह पर विश्वास है और किसी पर विश्वास नहीं है। गायत्री माता पर आपको कोई विश्वास नहीं है।
गायत्री माता कोई फल नहीं देती तो कल ही सारे कमंडल फेंक देगा और फिर भैरव जी को लाएगा, फिर उसमें भी लात मारेगा और फिर से हनुमान जी को लाएगा, फिर उसे भी मारेगा लात और फिर किसी और को ले आएगा।
बेटे, तेरा किसी पर विश्वास नहीं है सिवाय तेरी चालाकी के। जिस किसी पर तेरा विश्वास नहीं है उसका नाम है चालाकी।
बेटे, अगर तेरी श्रद्धा किसी एक पर रही होती तो वह फल देती। बेटे, मुझे यही गायत्री मंत्र आता है।
न हम 5 ओम लगाते हैं, न 3 लगाते हैं।
न मैं 5 जानता हूँ, न 3 जानता हूँ। मैं तो केवल गायत्री मंत्र जपता रहा और मेरा गायत्री मंत्र इतना चमत्कारी है कि इस गायत्री मंत्र को मैं ब्रह्मास्त्र कहता रहा हूँ और यह बताता रहा हूँ कि इसके बराबर कोई शक्तिमान नहीं है। मित्रों, मैं यही कर्मकांड करता रहा, गायत्री मंत्र जपता रहा। महाराज जी, हमको भी यही विधि बताइए। बेटे, पिछले साल हमने जो 45 मिनट की उपासना बताई थी, वह बहुत सोच समझकर बनाई थी। उसमें साधना एवं मुद्रा आदि का समावेश था। जप और ध्यान का समन्वय है उसमें। सूर्य का, सविता का ध्यान भी सम्मिलित है।
पंचकोशों के शोधन की प्रक्रिया है, देवपूजन की क्रिया है। यह पूर्ण उपासना है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से संतुलित आहार होता है। यह पूर्ण है। क्यों महाराज जी? अगर हम पंचकोश की साधना करना चाहें और कुंडलिनी की साधना करना चाहें तो? बेटे, यह इंडो पेशेंटों का इलाज है। जब किसी का ऑपरेशन होना होता है तो मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। नहीं महाराज जी, आप घर पर हमारा ऑपरेशन नहीं करेंगे। नहीं बेटे, तो मैं अपने आप अपना पेट चाकू से फाड़ लूं और सुई से अपने आप ही सिलाई कर लूं, अपने आप ही सी लूंगा। नहीं बेटे, ऐसा मत करना, क्योंकि इससे सेप्टिक हो जाएगा। तेरा ऑपरेशन हम ही कर देंगे, हमको इसका ज्ञान है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर जगह नहीं हो सकती। यह उच्च स्तरीय साधना है।
मित्रों,
हमारे गुरु ने जब जब एक साल के लिए हिमालय पर बुलाया है, जब भी जो कुछ काम पड़ा है वह वातावरण से संबंधित है, अभ्यास से संबंधित है। अगर हम आपको यहाँ बुलाएंगे तो इस तरीके से नहीं बुलाएंगे।
आपको जरा सा दबाएंगे, आपको किसेंगे।
हम आपको छूट नहीं दे सकते कि आप बाजार जाएं और वहां काफी पिएं, चाय पिएं और वहां बैठकर गप्पे मारें। हम आपको कितना कस देंगे? जितना कि हमको कस दिया गया है। आपके टाइम के बारे में हम कस देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8 बजे घूम कर आएं।
आपको टाइम पर ही आना पड़ेगा। आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। आप 3 बजे भूल जाते हैं तो 3:30 बजे उठिए।
अरे साहब, आंखों में नींद भरी है। नहीं, चल उठ, 3:30 बज गए हैं। नहीं साहब,
हम तो 4 बजे के बाद रात को 9 बजे रोटी खाने वाले थे। बेटे, हमारी ओर से आप 21 बजे रोटी खाना, पर यहाँ तो 5:30 बजे तक ही मिलेगी।
नहीं महाराज जी, हमको इतने बजे खाने की आदत नहीं है।
बेटे, तेरी आदत गई जहनुम में।
तुझे यहाँ के नियम का पालन करना होगा। हम तेरी आदत के गुलाम नहीं हैं।
तुझे यहाँ हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा।
बेटे, अभी तो हम इतना ही कसते हैं, परंतु आगे जा करके फिर कभी कसेंगे।
तब तेरा पांव प्लास्टिक से बांध कर उल्टा टांग देंगे। महाराज जी, फिर तो मैं चक्कर खा जाऊंगा। हाँ बेटे, चक्कर काट जाएगा तो तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। तब तो महाराज जी,
मैं यहीं रहूंगा।
हाँ बेटे, यही अच्छा रहेगा। मित्रों,
यह उच्च स्तरीय साधना है और यह ऑपरेशन के बराबर है। जब आप ऑपरेशन के लायक होंगे, जब हम आपका खून टेस्ट कर लेंगे कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, तब आपका आंख का ऑपरेशन करने को बुलाएंगे।
नहीं महाराज जी, हमको तो ऐसे ही करा दीजिए। नहीं बेटे, तेरी आंख खराब हो जाएगी।
तू डायबिटीज का मरीज है।
तेरी आंख खराब हो जाएगी।
तू डायबिटीज का मरीज है।
तेरी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे तो तेरा जख्म अच्छा नहीं होगा।
जख्म फैल जाएगा और आंख जो थोड़ा बहुत देखती है वह भी चली जाएगी।
इसलिए पहले हम देखेंगे।
हम यहाँ किसी को 10 दिन के लिए बुलाते हैं, किसी को 15 दिन के लिए बुलाते हैं और किसी को महीने भर के लिए बुलाते हैं और देखते हैं, टेस्ट करवाते हैं। अभी हम आपको बुला रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं और आपकी नब्ज देख रहे हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए जो कड़कपन आदमी के भीतर होनी चाहिए, जो संयम होना चाहिए, जो निष्ठा होनी चाहिए, वह आपके अंदर है कि नहीं। अभी तो हमने आपको धीरे धीरे कसा है। सीरियस में कसेंगे तो ची बोल जाएंगे। पिछली बार लोगों को कसा था तो वे ची बोल गए थे।
नमक बंद कर दिया था।
अरे साहब, रोटी सब्जी खानी पड़ेगी, वह भी बिना नमक के।
हाँ बेटे। महाराज जी, कुंडलिनी जगा दीजिए। बेटे, कुंडलिनी ऐसे नहीं जगती, कुंडलिनी तो सांपिनी होती है। हाँ बेटे, जब सपेरा आएगा तब मैं सांप भी जगवा दूंगा और सांपिनी भी जगवा दूंगा।
10 पैसे देना, दोनों के दोनों जगकर खड़े हो जाएंगे।
लेकिन बेटे, आध्यात्मिक कुंडलिनी थोड़ी महंगी है।
जब मैं देखूंगा कि आपके व्यक्तित्व और आपके मन के अंदर वो कड़क है जो एक अध्यात्मवादी के अंदर होती है, जब वह कड़क मुझे दिखाई पड़ जाएगी तो आपको बुला लूंगा और यहीं रखूंगा।
आप मेरे पास रहना। इसके लिए स्थान बना रहा हूँ, 100 आदमियों के लिए स्थान बना रहा हूँ।
100 आदमियों के लायक मेरे पास शक्ति है, इससे ज्यादा है भी नहीं।
मेरे गुरुदेव भी 100 से ज्यादा को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं गुरुजी, बड़ा आश्रम बना दीजिए।
नहीं बेटे, बड़ा आश्रम मैं नहीं बना सकता। 100 से ज्यादा का कंट्रोल न मैं कर सकता हूँ और न मेरे गुरुदेव कर सकते हैं। 100 बेड का अस्पताल आपने कहीं देखा है? 100 बेड के अस्पताल में कितने डॉक्टर